रिक्काणु, नेफ्रॉन, गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाइयां हैं। रिक्काणु का कार्य मूत्र उत्पादन और रक्त निस्पंदन में सहायता करना है। रिक्काणु, नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन दो संरचनाओं से बना होता है, वृक्क कोशिका और वृक्क नलिका, द रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। वृक्क कोशिका, यह नेफ्रॉन की एक निस्पंदन इकाई है और यह प्लाज्मा को फिल्टर करती है। ये ग्लोमेरुलस से बना होता है जो छोटी रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क से बनता है। वृक्क कणिकाएं वृक्क के वृक्क प्रांतस्था भाग, किडनी का बाहरी भाग में उपस्थित होती हैं। वृक्क नलिका, वृक्क नलिकाओं में समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका सम्मिलित होती है। ये जल और इलेक्ट्रोलाइट्स के होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृक्क कोशिका में केशिकाओं का एक समूह या गांठ होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये ग्लोमेरुल कैप्सूल से घिरा होता है जो एक दोहरी परत वाला उपकला कप होता है। एक अभिवाही धमनिका वृक्क कोशिका के अंदर जाती है और एक अपवाही धमनिका वृक्क कोशिका से बाहर निकलती है। वृक्क नलिका, वृक्क नलिकाएं चार भागों से बनी होती हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका। ये जल और इलेक्ट्रोलाइट्स के होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेफ्रॉन की कार्यप्रणाली। वृक्क नलिका को कार्य के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। समीपस्थ कुंडलित नलिका वृक्क प्रांतस्था में पाई जाती है। वृक्क धमनी से प्राप्त रक्त को ग्लोमेरुलस द्वारा फिल्टर किया जाता है। फिल्टर किए गए रक्त को फिर पीसीटी में भेजा जाता है। पीसीटी में ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल जैसे आवश्यक पदार्थों का अधिकतम पुनर्वशोषण होता है, साथ ही बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और जल का भी पुनर्वशोषण होता है। हेनले का लूप, अधिकतर मज्जा में यह एक यू आकार के लूप की तरह दिखता है जो फिल्टर किए गए तरल पदार्थ को मज्जा में गहराई तक ले जाता है। हेनले लूप के दो अंग हैं, अवरोही और आरोही अंग। अवरोही और आरोही दोनों अंग अलग अलग पारगम्यता दिखाते हैं। अवरोही अंग जल के लिए पारगम्य है लेकिन यह इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभेद्य है। दूसरी ओर आरोही अंग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पारगम्य है लेकिन जल के लिए अभेद्य है। यूरिया ना जोड़ और अन्य आयनों की कम मात्रा हेनले लूप के अवरोही अंग में पुनः अवशोषित हो जाती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क प्रांतस्था में पाई जाती है। डीसीटी एक छोटा नेफ्रॉन खंड और नेफ्रॉन का अंतिम भाग है। यह अपना निस्यन संग्रहण नलिकाओं में छोड़ता है। ये बाह्य कोशिकीय द्रव और इलेक्ट्रोलाइट होमियोस्टेसिस को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकत्रित नलिका मज्जा में वृक्क संग्रहण नलिकाएं वृक्क में लंबी संकीर्ण सीधी नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन से मूत्र को केंद्रित और परिवहन करती हैं। यहां सांद्रित मूत्र उत्पन्न करने के लिए जल का अधिकतम पुनर्वशोषण होता है। संग्रह वाहिनी मज्जा में एकत्रित नलिकाएं नलिकाओं की एक श्रृंखला से बनी होती हैं जो कॉर्टेक्स में कनेक्टिंग सेगमेंट से विस्तारित होती हैं। संग्रहण वाहिनी प्रणाली नेफ्रॉन का अंतिम भाग ग्रह और इलेक्ट्रोलाइट और द्रव संतुलन में भाग लेती है। सारा निस्पंद नेफ्रॉन द्वारा इस वाहिनी में डाला जाता है और वृक्क मज्जा में उतरकर मज्जा संग्रहण नलिकाएं बनाता है। नेफ्रॉन दो चरणीय प्रक्रिया में काम करता है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस रक्त को फिल्टर करता है और दूसरा नलिका रक्त में आवश्यक पदार्थों को लौटाती है और अपशिष्ट को हटा देती है। इस तरह रक्त शुद्ध होता है और अपशिष्ट मूत्र के रूप में उत्पन्न होता है। नेफ्रॉन रक्त को शुद्ध करने और इसे मूत्र में परिवर्तित करने के लिए चार तंत्रों का उपयोग करता है, निस्पंदन, पुनर्वशोषण, स्राव और उत्सर्जन। अभ्यास नेफ्रॉन के चार मुख्य कार्य क्या हैं? नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी की इकाई क्या है?